अपने अपने जीवन में प्रगति हुआ है, मतलब एक ऊंचे स्तर तक पहुंचा है, उनके अंदर कॉमनली तीन चीजें नजर आती है। उसने एक गोल बनाया, उसने अपना एक लक्ष्य निर्माण किया अपने जीवन में, जो उसको लगता है कि सबसे अच्छा लक्ष्य है, जिससे मुझे भी भलाई होगी और सबकी भलाई होगी। एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जो भी अपने जीवन में यशस्वी रहा है, दूसरा लक्ष्य उसके है कि एकाग्रचित होकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, व्यवसाय उसी को बढ़ता है। और तीसरा लक्ष्य यह है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व लगा देता है, पूरा शक्ति लगा देता है, यशस्वी होगा। एक सबसे अच्छा लक्ष्य का निर्माण करना, लक्ष्य को कभी खोना नहीं अपने आंखों के सामने से, और तीसरा पूरा अपना ताकत उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देना। अब देखोगे बड़े बड़े असुरों में भी ये लक्ष्य था, उनको क्लियर भी मालूम था, मैं विष्णु को मारूंगा और राज्य करूंगा, एक अज्ञान में लक्ष्य बनाकर प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा है, पर उनका उसका परिणाम क्या होगा, भले वो लक्ष्य को प्राप्त करे, पर अगर अज्ञान से किया गया है, मूल अवस्था में किया गया है, मोह आशा मोह कर्मानो मोह ज्ञान विचेतस राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी छिपा। रावण ने कोई कम तपस्या नहीं की, हिरण्यकशिपु ने कोई कम तपस्या नहीं की, बहुत तपस्या किया उन्होंने, बिना तपस्या के किसी को फल नहीं मिला, पर दिशा गलत था, उद्देश्य गलत था, अज्ञान के ऊपर आधार था, और इसीलिए मोह आशा सारी आशा निराशा हो गई, मोह कर्मानो सारा तपस्या विफल हो गया, मोह ज्ञान सारा उनका तथाकथित ज्ञान जो था अंत में पता चला उसको अज्ञान। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अगर लक्ष्य बनाना है तो कैसा लक्ष्य बनाना है, ऐसा लक्ष्य बनाओ जो जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों प्राप्त हो जाए। न देहु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया बहिरंथ मार्ग प्रहलाद महाराज कहते स्वार्थ बनो ही, अरे स्वार्थ बनना है उनको, स्वार्थी बनो, स्व अर्थ, स्वार्थ मतलब क्या, स्व अर्थ, अपने आप की भलाई क्या है वो जानना। पर तकलीफ ये है कि अज्ञान के कारण स्व मतलब हमने शरीर समझ लेते हैं, देहात्मबुद्धि, और शरीर को अच्छा रखने के लिए जो जरूरी है उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। पर सच्चा स्वार्थ प्रहलाद महाराज कहते हैं नजे गति विदु स्वार्थ गति विष्णु, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का स्वार्थ किसमें है, भगवान को प्रसन्न करना, हमें वांशो जीव लोके जीव मुक्त स्थान भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करना उसमें स्वार्थ और परमार्थ भी है। कैसे परमार्थ है, यदा करो मूल निषेचने तृप्यंत स्कंद भुजो प्रशाखा, अगर आप जड़ में पानी डालोगे, विष्णु सारे सृष्टि का जड़ है, अगर जड़ में आप पानी डालोगे तो धड़ डाली पत्ता फूल फल आपके परिवार आपका समाज आपका देश मानवता पूरी ब्रह्मांड सब में अपने आप सबकी भलाई कर रहे हो आप, तो भगवान की भक्ति जो है सबसे परो धर्मो यदो भक्ति अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध भगवत कहता है सवई पुंसाम परो धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है यदो भक्ति कैसी भक्ति अहेतु की बिना कोई हेतु के अप्रतिहता बिना कोई रुकावट के यह आत्मा सुप्रसिद्ध न केवल आप तृप्त हो जाओगे आप दुनिया इतना इधर भाग रही है और तू एक जगह बैठ के हरे कृष्ण कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा अपना जीवन, कुछ काम करना। कभी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कर रहे तो लगता है कुछ कर रहा है, चुपचाप बैठ के कुछ करना ही है, फायदा नहीं है, दिन भर हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये प्रभु सेवा दो सेवा दो सेवा आया नहीं अभी टाइम नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण नहीं। सोलह माला में सेवा मांग रहे हैं और उसके बाद जो भी हम सेवा को है चीज, पर कम से कम ये माला करने का उद्देश्य क्या है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण के प्रति अर्पित हो, भावना को शुद्ध रखने के लिए। जैसा एक ड्राफ्टमैन होता है, इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन का काम क्या है, ड्रॉइंग्स बनाने। सुबह अगर वो 5 मिनट निकाल कर अपने पेंसिल को एकदम नोक अच्छा बना दे, दिन भर वो अगर वो ये करे तो फर्स्ट क्लास बनेगा वो ड्रॉइंग। पर अगर आलसपन के कारण वो पेंसिल को नोक ठीक से नहीं निकाले तो थर्ड क्लास ड्रॉइंग बन जाएगा। और वो पेंसिल को शार्प कर रहा हो सुबह 5 मिनट के लिए, कोई बोलता है टाइम पास कर रहा है ड्रॉइंग बनाना, तो ठीक है अच्छा बनने के बना चाहिए। इस तरह से जब हम माला करते हैं अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं तो दिन भर का कार्य, दिन भर का हमारा लोगों के प्रति जो इंटरेक्शन होता है उसमें कृष्ण को केंद्र रखें, लोगों की सही भलाई हो। जब तक हम अपने हृदय को चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारे आचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारे कार्य शुद्ध नहीं होंगे। सबसे पहले सुबह उठकर हमारे अपनी चेतना को हम शुद्ध करें, बहुत बड़ा सबसे बड़ा सेवा है। तो हमारे पूरे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारे आचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे, सब कुछ खबर। तो ये हो गया पहला चीज, भगवान की भक्ति के प्रति बढ़ना, अग्रसर होना, क्योंकि यही लक्ष्य है, यही हमको जन्म की जगह से बात कर सकता है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमको कन्वीन चलाना चाहिए कि भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन, श्रवण बढ़ाना चाहिए, कीर्तन बढ़ाना चाहिए, सेवनम पाद सेवनम बढ़ानी चाहिए। अगर ये बढ़ नहीं रहा है तो धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई है। अब क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दुर्योधन है हमारे, उसके प्रति आसक्ति, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए वो दृढ़ता नहीं आ रही है। बाहर निकल कर अपने कम्फर्ट जोन, कंफर्ट जोन मतलब सब जगह ठीक ठाक है, चल रहा है गाड़ी आ रहा है, उसमें अटक जाते हैं और उसमें से निकलना नहीं चाहते। तो कोई एक व्यक्ति आना चाहिए जो आपको खींच लिया धक्का मारे, जब तक नहीं तब तक नहीं नहीं जाते, पर कब तक कोई धक्का मारे, अंत तक हमको वो मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं मैं करूंगा। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तो भगवान की भक्ति के अलावा और कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं। दूसरा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है पूर्णांदर, हर एक चीज में हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं हमारे दिन में, दिनचर्या में, हमारे जीवन में, कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, एक ही प्रश्न होना चाहिए, ये मेरे लक्ष्य की ओर मुझे बढ़ा रहा है या दूर ले जा रहा है, निकट ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है, हमेशा ये सोचते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन को पूछा गया, अर्जुन बहुत सारे द्रोणाचार्य सबको सिखाते थे, कौरव पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाते थे, पर उनको लगा कि अर्जुन जरूर यशस्वी होगा, क्यों, क्योंकि एक दिन उनकी परीक्षा ली, सब लोगों को धनुष बांट दिया और दूर पेड़ में एक मिट्टी का एक चिड़िया बना के रख दिया, चिड़िया के आंख के बोला उसमें घेरना, सबको धनुष बांट दिया, तो चलो फिर चलो युधिष्ठिर महाराज आए, ये लो धनुष बांट लो, ठीक है देख रहे हैं, हाँ क्या दिख रहा है, आप दिख रहे गुरुदेव, और क्या दिख रहा है, पेड़, हाँ पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते पत्ते भी दिख रहे हैं, पेड़ पक्षी पक्षी भी दिखता है, तो ये थोड़े धनुष रखो साइड में, भीम को बुला, तुमको क्या दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पीछे में किचन में क्या पक रहा है वो भी दिख रहा है, तो ये ठीक है बाद में जरूर है, सबको ऐसे बुला, बाद में अर्जुन को बुला रखो, तुमको क्या दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ नहीं गुरुदेव, पेड़ दिख रहा है नहीं, पत्ता दिख रहा है नहीं, अरे चिड़िया को दिख रहा है नहीं, तो क्या दिख रहा है, चिड़िया का आग दिख रहा हो, कुछ नहीं दिख रहा, सिर को चिड़िया का आम मुझे दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तुरंत द्रोणाचार्य ने प्रेम को दबाया, बोले फिर चलने से पहले कह दिया निश्चित रूप से तुम यशस्वी हो, तेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे अंदर चला। फिर चलाने से पहले मैं कहूंगा कि तुम भेद पाओगे, क्यों व्यवसाय आत्मिका बुद्धि देते हैं गुरु महिला रोबा के जीवन में देखते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था, भले वो बिजनेस कर रहे थे, भले वो अपना परिवार चला रहे थे, भले सब कुछ कर रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में भगवद गीता के श्लोक 2.41 दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक पूर्णंदन उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जिसको सुनने के बाद प्रभुपाद के जीवन में दृढ़ता आई और एकाग्र हो गए। उससे पहले भी थे पर उसमें दृढ़ता आई कि जो व्यक्ति ने अपने गुरु के वाक्य को, गुरु की जो गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ने कोरियो ऐक्य आरना कोरी हो मने भाषा, जब हम सदगुरु की शरण में लेते हैं तो हम वचन देते हैं तीन चीज, एक सोना जब नियमित रूप से करूंगा, मैं चाहती हूँ तत्परी से पालन करूंगा और इस सदगुरु के आंदोलन में मैं दासानुदास नॉट बासानुदास दासानुदास बनकर मैं सुबह उसके अलावा दूसरा चीज है जो अनुकूल है संकल्पम अनुकूल है संकल्प वो प्रतिकूल है संकल्प जो अनुकूल है स्वीकार करो जो प्रतिकूल है त्याग करो, क्योंकि ये समाना है जाना इससे अटक नहीं जाएगा, इसमें अटक जाएंगे तो धृतराष्ट्र बन जाएंगे, बहुत सारे दुर्योधन पैदा हो जाएंगे और दुर्योधन की आसक्ति के प्रति बढ़ नहीं पाएंगे हम आगे। ये बहुत जरूरी है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब प्रभुपाद ने देखा नहीं, फिर सोचा नहीं, कोई भी कठिनता कठिन नहीं रहेगी, कठिन से कठिन चीज सरल हो जाएगी जब एकाग्र चित्त व्यक्ति रहता है और जब नहीं रहता बहुशा अकाल अनंताश्च बुद्धयो, सरल से सरल चीज कठिन हो जाएगी अगर एकाग्र चित्त नहीं रहेगी। हम देख सकते हैं प्रभुपाद के जीवन में अकेले बूढ़े व्यक्ति प्रभुपाद जो काम किए कृष्ण की एम्पावरमेंट कृष्ण की शक्ति से, उनके कई नौजवान युवक शिष्य साथ मिलकर नहीं कर पा रहे, उतना नहीं कर पा रहे, हर एक चीज में क्योंकि ये उनका क्लियर व्यवसाय और सब चीजें ही सोचते थे क्या मेरे सद्गुरु की इस आंदोलन में ये अनुकूल है, अनुकूल है तो स्वीकार करो प्रतिकूल है क्या। और तीसरा एक तो लक्ष्य को निर्णय का फिक्स करना और निश्चय करना क्या हमारा लक्ष्य है, भगवान की भक्ति नवदा भक्ति में प्रगति करना, क्योंकि भक्तिया तो अनन्य आवश्यक अहम है, भक्ति के बिना और भक्ति कर भक्ति करने से आपकी भी भलाई पूरी दुनिया की भी भलाई परिवार की भलाई देश की भलाई सबकी भलाई। और दूसरा एकाग्र चित्त हो उसके अलावा उसके लिए अनुकूल है तो मैं कोई भी चीजों को मैं स्वीकार करूँ और उसके लिए प्रतिकूल है जितने भी अच्छे लगे जितने भी हमको बहुत ही मतलब लगे कि बहुत फायदेमंद है नहीं चाहिए, अनुकूल है कुछ भी करने के लिए तैयार। अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीजों को त्यागना सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या का मतलब नहीं जो हमको अच्छा लगता है वो करें, हमको एकादशी के निर्जल करना अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगे नहीं लगे जरूरत वो है क्या भक्ति में अनुकूल है, भले हमको प्रतिकूल लगे हमको तकलीफ लगे उसको हम स्वीकार करें। तीसरा चीज और प्रतिकूल चीज जो प्रतिकूल है जितना भी अच्छा लगे, जैसे धृतराष्ट्र को अच्छा लगता था सब लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं राजा राजा करके संबोधित कर रहे हैं और महल ले रह रहा हूँ सब कुछ जब चाहे जो चाहिए सब कुछ मिलता है यहाँ, पर अगर मैं सब छोड़ के जंगल जाऊंगा भगवान की प्राप्ति के लिए क्या होगा कैसे होगा। प्रभुपाद जी भी आराम से वृंदावन में थे, भक्ति कर रहे थे तो धृतराष्ट्र जैसे नहीं थे वो आराम से थे, फिर भी उनका हृदय जल रहा नहीं गुरु की आज्ञा है कि पाश्चात्य देश में ये अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करने बोला, तो मेरे लिए धृतराष्ट्र का महल ऐसा हो गया, निकलना है मुझे किसी ना किसी तरह से। तैयारी किया उन्होंने, एक बार तैयार हो गए, उनको लगा मैं तैयारी हो गया, और निकल पड़े। भले हार्ट अटैक हो, भले जंगल में जा रहा हूं, क्या होगा कहां होगा, निकल पड़े। गुरु की आज्ञा, जैसे विदुर, विदुर जैसे वो आज्ञा को देख रहे नहीं, गुरु की आज्ञा। और तीसरा, कायेन हंसा बुद्धा केवल इंद्रियरूपी योगिना कर्म पूर्ण। एक बार एकाग्रचित हो गया तो अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, जो कुछ भी है उसको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाए, यथाशक्ति जितना हो सके। और अगर ऐसा एक संकल्प लेके हम प्रगति करेंगे तो कभी जीवन में हम पछताएंगे नहीं, कभी नहीं पछताएंगे कभी। भले बाहर रूप से ऐसा लगे कि हमने बहुत कुछ खो दिया, इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलते चलते हमने बहुत कुछ खो दिया, हम जब बाहर के लोग कहेंगे क्या क्या तू खा सकता था, कहां कहां तू जा सकता था, क्या क्या तू कर सकता था, क्या क्या तुझे मिल सकता था, सब कुछ तूने छोड़ दिया। क्या फायदा ऐसे चीजों को इकट्ठा करते हुए, जो अंत में आप चाहोगे नहीं चाहोगे सब कुछ वैसे ही जाने वाला। तो जाने से पहले अगर उसको लक्ष्य को प्राप्त करके उसके लिए उपयोग करो, तब दैट इज इंटेलिजेंस, वो बुद्धि होता है। ये शरीर एक उपहार है भगवान का, इट्स ए फैट गिफ्ट, फैट means facility, A is ability, T मतलब time। भगवान ने हमको तीन उपहार दिया है इस मनुष्य जीवन में। कौन सा तीन उपहार? Fact, F मतलब facility, एक बहुत बड़ा facility मनुष्य शरीर दिया है। ये शरीर जो है सबसे best उपहार है आत्म साक्षात्कार के लिए। मनुष्य योनि से श्रेष्ठ और कोई योनि नहीं, देवता योनि भी उतना श्रेष्ठ नहीं भगवान की भक्ति के जितना मनुष्य योनि। इसीलिए देवता गण भी लाइन में खड़े हैं आरएसी कि मेरे को मनुष्य योनि मिले, खास करके भारत भूमि, खास करके भारत भूमि में, और उसमें भी मनुष्य चले, भारत और भूमि पे पहला मनुष्य जन्म मिला, जन्म सार्थक करें करो करो सबसे बड़ा फैसिलिटी मिल गया हमको ऑलरेडी एक। और उसमें भी सद्गुरु का आश्रय मिल गया है, मार्ग मिल गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। और उसके बाद एबिलिटी, एक तो मनुष्य जीवन मिला है उसमें एबिलिटी, कुछ एबिलिटी मिला है, कुछ फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक शक्ति कुछ मिली है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। एक तो फैसिलिटी मिला है, शरीर मिला है, घर मिला है, मान सब देह वेह, और कुछ एबिलिटी, कुछ शक्ति मिली है जिसको उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा समय, टाइम, मनुष्य जीवन मतलब तुमको एक चेक दिया गया, कल बोलो इतना टाइम है तुम्हारे पास। तो ये फैसिलिटी मनुष्य जीवन, और किस परिस्थिति में मिला है, किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 1 लाख रुपया है, संपत्ति है, घर है, जो कुछ भी है। तो ये फैसिलिटी और कुछ एबिलिटी और टाइम, ये तीन चीज हमको है। और अब इस चीज को भगवान अंत में देखेंगे, एट द एंड काउंट करेंगे, इस चीज के लिए तुमने इस चीजों को मैंने उपहार दिया। अगर मैं किसी को कुछ उपहार देता हूं और मैं देखता हूं अगले दिन आके देखता हूं उसने उसको फेंक दिया, देखता है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है, तो श्रेय की ओर, श्रेयस मतलब जो अभी तपस्या भले लगे बाद में फायदा ही फायदा, थोड़ा तपस्या लगे फायदा ही फायदा। चार दिन पहले हमारे गुरुकुल के पुराने बच्चे जो पास आउट हो गए दसवीं करके कॉलेज में काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक हफ्ता पहले मैंने बोला है, हफ्ते में एक बार मैं मीटिंग देता हूँ, तो उनको पिछले हफ्ता बोला था कि आप लोग सब अपना संकल्प लिख के लाओ नए साल से क्या करोगे। हृदय से आप सोचे क्या क्या चीजें छोड़ना है, क्या क्या चीजें जोड़ना है, लिखो सोचो करके। और कुछ टिप्स दिया था, ऐसा करो कि इतना बड़ा संकल्प बस लोगे कर नहीं पाओगे तो ढीले पड़ जाओगे, कौन से मैं 64 मामा करूंगा, अति उत्साह। और आगे भी नहीं कर पाया तो बोला अगले साल से शुरू करूंगा, अभी हो गया एकदम जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त आदमी बोलेगा नहीं मैं छठा स्टेप पे डायरी की कूदूंगा तो फिसल के गिरेगा, सर फूटेगा, नीचे लेटा रहेगा, पर अगर चढ़ेगा ही नहीं तो भी फायदा नहीं, कम से कम एक स्टेप या ज्यादा शक्ति है तो दो स्टेप चढ़ो चलेगा, चलो जो आगे बढ़ते हो ऐसा बोला था उनको। एकदम ठीक है मैं 8 बजे उठता था, अभी 7:55 को उठूंगा या 7:49 को उठूंगा, 59 को उठूंगा, ये बहुत हो गया, बहुत कम हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब 100 साल के अंदर तुम 7:30 बजे उठना शुरू कर दिया तो थोड़ी होगा, उतना भी ढीला मत हो जाओ और इतना भी कड़क मत करो कि बाद में पहुंचोगे नहीं, अब बाद में निराश होकर छोड़ ही दोगे, January 2nd से बोलोगे कि अगले जनवरी वर्ष से शुरू करो, ऐसा भी नहीं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा से लिखा, बहुत सुना, और उसके बीच एक लड़के ने लिखा कि मैं भी गंभीर होना चाहता हूँ और अगले इतने सालों के अंदर मेरे को पूर्ण रूप से मतलब दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति में प्रगति करना, अब सीरियस होना है मेरे को। हृदय से बोला उसने कि उसको सुनकर दूसरे सब बच्चों में सब बदल दिया आत्मा और उसने बताया, इस लड़के ने बताया क्यों ऐसे हो गया उसने बताया, बोला प्रभु जी आपने बोला, उस दिन मैं घर गया, मुझे एक फोन कॉल आया कि मेरा मामा 30 साल का है एक्चुअली, तो छोटा मामा वो कल्याण में रहता है, उसको कुछ बीमार था, डॉक्टर के पास गया, उसने एक इंजेक्शन दिया, जहाँ इंजेक्शन दिया गांठ आ गया है, तो 15 दिन में बहुत तकलीफ हो रहा था, तो उसने एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कुछ सर्जरी की और सर्जरी से कुछ इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया और कुछ तकलीफ हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फोन आया इसको और वो गया, अगले दिन उसके आँखों के सामने ये आदमी गुजर गया, फिर हो गया उस काफी गंभीर था, मगर क्या डाटा क्या प्रभु जी ने दे दी नहीं नहीं कुछ नहीं डाटा फिर क्या हुआ अगले दिन अभी 6 बजे प्रभु जी ने उठा तो जब उठता नहीं है 4 बजे उठ गया वो मेरे उठाने से पहले ही उठ गया और बैठ के जपा कर रहा रण को जी स्नान करके तो मैंने पूछा क्या तो वो डाटा हो गए डाटा नहीं माता जी गंभीर होता हो गंभीरता से भक्ति करो मेरे को कह रहा है वो राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येरम भयना ये माया का तरीका है माया ऐसा ढक देती है अरे छोड़ो बहुत समय है भक्ति तो करना ही है ना मालूम है तुमको करना ही है पहले ये कर लो फिर 2 साल में ये कर लो 3 साल में वो कर लो सब सेटल कर लो उसको ये बना दो उसका घर बना दो सब होने के बाद करना तो है ही भक्ति वो तो मालूम है ना तुमको प्रभुपाद जी ने बताया है हरे कृष्णा तो जपना ही है कर लो पहले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पूरा जीवन तो भगवान को दे दे बच्चा पूरा साल भगवान को दे दे पूरा महीना भगवान को दे दे पूरा हफ्ता भगवान को दे दे पूरा दिन तो भगवान को दे दे पर ये क्षण ना मेरे को ये माया का प्रपोजल पूरा कर भगवान को दे नहीं पर ये क्षण मेरे को दे और शुद्ध भक्त उसके विरुद्ध जैसा हरिदास ठाकुर जप करते बैठे हुए उनका नियम था कि इतना जप जप के बाद ही दूसरा सब कुछ माया देवी साक्षात माया देवी आ गई और कह रही हरिदास तुम इतने सुंदर हो मैं भी युवती हूं तुम भी एक घमघोर और हमारे अंदर तो बहुत इच्छाएं हैं तुम तो वांछा कल्प करो हो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो मेरी इच्छा भी है पूर्ण करो हरिदास ठाकुर ने कहा 100% आप बैठो सिर्फ मेरा ये व्रत है ये मेरा व्रत है कि करने के बाद ही मैं सब कुछ करता हूं अब बैठो जैसा मैं खत्म हो जाएगा फिर बस आपकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा हरे कृष्ण कितना मारा करते बस मेरा आपको एक महीने ये महीने में मेरा 1 बिलियन ऐसा कुछ मेरा ये है करोड़ का वो हो गया जैसे हो गया
करके हमारा जो लक्ष्य क्लियर करके एकाग्रचित होकर पूरी शक्ति लगाकर हम अगर
शिक्षा में मिलता है, वहां में हमारी जैसी धृतराष्ट्र जैसी बुद्धि है, असक्त होकर कॉम्प्लेसेंसी ढीला पर आना, और बहुत सारे दुर्योधन है हमारे जिसके प्रति हमारे आसक्ति है, जिसको छोड़ना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि ठीक नहीं है, ये आदतें दुर्योधन जैसी, हमको मालूम है ये निरर्थक लड़का है पर इसको छोड़ नहीं सकते, असक्ति हो गई, उसमें से निकलना है तो एक महात्मा विदुर जैसे महात्मा के वचनों को अपने हृदय में गुरु मुख बनो आज क्या छिपते आज्ञा को भी हो नहीं, और ऐसे प्रगति करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे, भगवान शक्ति देंगे, जिसके द्वारा इस फल सागर देखने में बहुत लंबा मिलता है, कुछ नहीं एक एक दिन मिलता है आपको, इसीलिए भाव सागर कभी कभी सोचते पूरा जीवन भर में कैसा कृष्ण भक्ति करूंगा, अरे छोड़ो पूरा जीवन आज का दिन करो बस, कल का समय मिल जाएगा, और इसीलिए वो जो बड़ा सागर है वो बछड़े के खून में जितना पानी उतना छोटा हो जाता है, आराम से पास कर पार कर देता है, क्योंकि एक क्षण मन मना भगवान भक्त मन जय जना वो एक क्षण मिलता है, वो क्षण अगर हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की सेवा में कृष्ण के आदेश के अनुसार लगा देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे पूरा जीवन गुजर गया हमारा आराम से, अगर नहीं ऐसा चला जाएगा जीवन आपका देखते देखते अरे क्या हो गया चला ही गया पूरा जीवन, तो जीवन वैसे भी जाने वाला ऐसा चला जाएगा ऐसा जा सकता है, इसमें हम लोग एक क्षण इन्वेस्ट कहां कर रहे मेरा नम्र निवेदन है आप सबसे 13 दिन बाकी है इसके ऊपर थोड़ा गंभीर से विचार कीजिए, सोचिए हमारी धृतराष्ट्र जैसी स्थिति के बारे में हमको सोचना और महात्मा विदुर जैसे महात्माओं के वचनों पे ध्यान देना, और अगर उसके ऊपर अग्रसर नहीं होंगे तो हमारी स्थिति भी वैसे ही होगी जिन लोगों ने नहीं, अगर महात्माओं के चरण चिन्हों पर चलते गए कोशिश भी किए कम से कम तो फिर हमारा स्वर्ग होगा। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कृपा कर दे तो फिर हमारे में माया जैसा समुद्र है वो
बताए तैयार बड़े क्या क्या कहीं मगध पर से सूचना है क्या सर्वकुलीन प्रमाणया है कृपया वक्ता ने लक्ष्य जो नैसागर अनेक सूचना है अनेक तारखा है अनेक विषय की सविस्तर वर्णन किया है। पहली सूचना है पुनः यात्रा विषय पुनः यात्रा की शेवट की सूचना से तैयारगढ़ की पुनः यात्रा की श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर यात्रा द्वारे आयोजित के लिए बताते कि पुनः यात्रा 25 जनवरी से 28 जनवरी पर्यंत है। 4 दिवस की पुनः यात्रा है। पुनः यात्रा करता अपना नाम व त्याबरोबर लक्ष्मी देने की शेवट की तारीख कोल्हापुर मध्ये 21 डिसेंबर है। पुनः यात्रा करता प्रत्येक की 700 रुपये असा अशी ही लक्ष्मी है। या 700 रुपये मध्ये राहणं व प्रसाद याची सोय आहे। जाणं येणं प्रत्येकाने स्वतःच करायचं आहे। पुन्हा यात्रेकरता पात्रता आवश्यक आहे आणि या पात्रतेमध्ये महत्वाची एक आहे की काउन्सिलर सिस्टीमचा तो व्यक्ती सदस्य असला पाहिजे। त्याचबरोबर इतर सर्व अटी 4 नियम 16 म्हणा या तो पूर्ण करत असला पाहिजे। जाणं येण्याचं स्वतः करायचं आहे त्यामुळे बुकिंग तुम्ही स्वतः करा किंवा इतर भक्तांबरोबर करा। पुन्हा यात्रेला तुम्ही 4 दिवस ही यात्रा आहे त्यामध्ये 2 दिवस येऊ शकता किंवा 1 दिवस देखील येऊ शकता। त्याचबरोबर पुन्हा यात्रेला तुम्ही राहण्याची स्वतःची सोय देखील करू शकता। ज्या भक्तांना स्वतःची राहायची सोय करायची आहे किंवा ते 2 दिवस येणार आहेत त्यांना त्यांचे 700 रुपये मधले त्याप्रमाणे रक्कम परत केली जाईल। खरं पहिल्यांदा आता रक्कम भरताना प्रत्येकी 700 रुपये याप्रमाणे भरायचे आहे। जी मुलं 5 वर्षाहून मोठी असतील त्यांच्याकरता पुन्हा यात्रेची सर्व रक्कम म्हणजे 700 रुपये भरणं आवश्यक आहे। 5 वर्षाखालील मुलांना यात्रा मुफ्त आहे तर त्यांनी फॉर्म भरणं आवश्यक आहे। पुन्हा यात्रेकरता नाव तुम्ही शेषचरण प्रभू यांच्याकडं त्याचबरोबर अजित प्रभू जे संकीर्तन स्टॉलवर असतात त्यांच्याकडे द्या विनंती। पुन्हा यात्रेला तुम्ही नाव दिल्यानंतर कॅन्सलेशनची शेवटची तारीख 20 जानेवारी आहे। जो व्यक्ती 20 जानेवारीला कॅन्सलेशन करेल त्याला त्याचे पूर्ण रक्कम परत दिली जाईल। त्यामुळे तुम्हाला जर का वाटत असेल की मी थोडं तरी येऊ शकते तर तुम्ही अवश्य नावं द्या आणि 20 जानेवारी पर्यंत मुदत आहे तुम्ही त्यावेळेला जरी कॅन्सल केलं तरी पूर्ण रक्कम तुमची परत दिली जाईल। पुढची सूचना आहे परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यांच्या व्यासपूजेविषयी। गेले 2 रविवार जी व्यासपूजेची तारीख सांगितलेली होती 20 जानेवारी यामध्ये थोडा बदल झालेला आहे। राधानाथ महाराजांची आता नवीन व्यासपूजेची तारीख ही 6 जानेवारी असणार आहे। तर 6 जानेवारीला महाराजांची व्यासपूजा ठरलेली आहे मुंबई या ठिकाणी। मागच्या वर्षी ज्या ठिकाणी व्यासपूजा साजरी झाली त्याच ठिकाणी ही व्यासपूजा होईल। तर कृपया सर्व शिष्यांनी आणि इतर भक्तांनी तिची नोंद घ्यावी ही विनंती। तर ज्या भक्तांना व्यासपूजेकरता मनोगत द्यायचं आहे ऑफरिंग द्यायचे आहेत त्यांनी 25 डिसेंबर पर्यंत त्यांचे हे मनोगत किंवा ऑफरिंग मुरलीधर प्रभू यांच्यापर्यंत एकतर ईमेलनं किंवा कुरिअरनं पोहोचवावं ही विनंती। त्याप्रमाणे त्यांचे मनोगत किंवा ऑफरिंग महाराजांच्या व्यासपूजा पुस्तकामध्ये साचले जाते। पुढची सूचना आहे तिरुपती यात्रेविषयी। तर जानेवारीच्या 29 तारखेपासून ते 2 फेब्रुवारी पर्यंत ते 5 दिवस तिरुपती यात्रा आहे आणि या तिरुपती यात्रेचा सर्वात आकर्षण असा आहे की तिरुपती इस्कॉन मंदिरचं उद्घाटन आहे। हे जे भव्य तिरुपती मंदिर उभा केलेलं आहे त्या मंदिराचा उद्घाटन सोहळा आहे आणि या उद्घाटन सोहळ्याकरता परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इतर भक्तांना घेऊन जात आहे। तर 29 जानेवारी पासून 1 फेब्रुवारी पर्यंत हे 4 दिवस उद्घाटन सोहळा असेल। 3-4 दिवस हा उद्घाटन सोहळा असेल आणि 2 फेब्रुवारीला 1 दिवस महाराज यात्रा घेऊन जातील। तर या यात्रेची माहिती पुढील प्रमाणे भक्तांनी तिरुपतीला ज्या भक्तांना तिरुपती यात्रेला जायचं आहे त्यांनी त्यांचं नाव येत्या शुक्रवार पर्यंत अजित प्रभू यांच्याकडे द्यावं. येत्या शुक्रवार पर्यंत अजित प्रभू जे स्टॉलवरती आहे त्यांच्याकडे नाव द्या, कारण तिरुपती यात्रेचं नाव लगेचच मुंबईला पाठवायचे आहे. नेहमीप्रमाणे ही पुढची सूचना श्री प्रभुपाद ग्रंथ वितरण महोत्सव याविषयी आहे. अनेक भक्त आपल्या भक्त समाजामधील ग्रंथ प्रभुपादाचे घेऊन जात आहेत आणि वितरित करत आहेत. तर आमची सर्व भक्तांना परत परत हीच विनंती आहे की तुम्ही जो ग्रंथ वितरण करत आहात त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत आणि अतिशय सुंदररित्या हा ग्रंथ वितरणाचा कार्यक्रम सुरू आहे. भक्त श्री प्रभुपादांच्या भगवत गीता व इतर छोटी पुस्तकं श्रीमद भागवतम यांचे संच घेऊन जातात आणि त्याचं वितरण करतात. तर अजून हा पूर्ण डिसेंबर आपल्याला हा कार्यक्रम करायचा आहे आणि श्री प्रभुपादांची अनेक छोटी पुस्तकं त्याचबरोबर काही भगवत गीता देखील आपण मागवलेल्या आहेत. सर्व भक्तांच्या त्यांनी ही विनंती की त्यांनी जास्तीत जास्त ग्रंथ वितरित करावेत आणि याकरता तुम्ही स्टॉलवरनं ग्रंथ घेऊन जाऊ शकता आणि त्याचं वितरण करा ही विनंती. गेल्या रविवारी सूचित केल्याप्रमाणे ही आता काउन्सिलर सिस्टीम विषयीची दुसरी सूचना असणार आहे आणि पुढच्या रविवारी असं पकडून ही या तीन सूचना केल्या जातील. तर गेल्या रविवारी पहिल्यांदा सूचित केलं होतं आणि आज परत आपण सूचित करतोय की कोल्हापूरमध्ये जे काउन्सिलर सिस्टीम कार्यरत आहे या काउन्सिलर सिस्टीम मध्ये जे भक्त सहभागी आहेत त्यांच्याकरता ही सूचना. तर कोल्हापूरमध्ये तिघजण काउन्सिलर आहेत, वृंदावन अनंत प्रभू, व्रजभक्ती प्रभू आणि मी. तर ज्या भक्तांना स्वतःचे काउन्सिलर बदलायचे आहेत तर ते तुम्ही बदलू शकता आणि त्याकरता कुठल्याही प्रकारचा संकोच असणं आवश्यक नाही, कुठल्याही प्रकारचा संकोच करू नये. तुम्ही तुमचे काउन्सिलर परत फेर निवड करू शकता. व्रजभक्ती सदस्यांना विनंती आहे की कृपया हॉलमध्ये प्रसाद घेऊन